أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، كيسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے شوق کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں کو آئیڈیل ہومز بنانا چاہتے ہیں، یا پھر بنے ہوں گے اور آپ اپنی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم آج کے اس لیکچر میں کیا سیکھنے والے ہیں؟ بس ایک چیز، میرا پیشن ہے کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے بچے ہمارے سامنے جتنے نیک ہیں ہمارے بعد اس سے بھی زیادہ نیک ہو، اور ہمارے بچے جتنا اپنے دوستوں میں رہ کر خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ اپنے گھر میں بھی خوش رہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو سٹڈی کر سکے، کتابیں پڑھنے کا ہمیں سب کو بڑا شوق ہے، اب نہیں ویسے اتنا رہا، اب آڈیو ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شوق ہوتا ہے. تو آج آپ سب کو جو پیغام میں دے کے جاؤں گی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھیے، اپنے بچوں کو توجہ دیں، اپنے شوہر کو. جو ہمارا سب سے خوبصورت گواہ ہوگا نا قیامت کے دن، وہ ہمارے اپنے فیملی کے لوگ ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم ان سے سرخرو ہوں اور وہ ہم سے سرخرو ہوں. اس کو الاؤ کر دیتی ہوں. یہ پوچھ رہے شروع میں یہ جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے ہمیں کم از کم ایک فوکس ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو نیویگیٹر میں ایڈریس ڈالتے ہیں نا، تو یہاں بالکل پیس فل ہو کے بیٹھیے، آپ کے فون آپ کی چیزیں سب اندر، صرف چہرے کے اوپر لگے ہوئے اعضاء کو دیکھ لیجئے تو اللہ نے ہر حصے کو مختلف کام دیا ہے. آپ کب صحت مند محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ جب آپ کا سارا جسم صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. اور بیمار کب ہوتے ہیں؟ کبھی آنکھیں کام نہیں کرتی تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی آپ کا کان میں کچھ درد ہے تو آپ کو کان کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو بس مثال سمجھ لیجئے، ہم جب اپنے جسم کو صحت مند دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حصہ صحیح کام کر رہا ہے. اور جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو اس کے اندر کے کوئی حصہ کام نہیں کر رہا. بالکل، خاندان، فیملی، بون، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جب گھر کا، خاندان کا، فیملی کا ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں یعنی رسپانسبلٹیز کو نبھاتا ہے، دوسرے کو اس کے رائٹس دیتا ہے، تو الحمدللہ خیر ہی خیر ہوتی ہے. اور جب آپ اس چیز کو بدل دیتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. بالکل اسی طرح سے خاندان کی مثبت کردار سازی، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر غلط انداز میں پڑھ دیتی ہوں ہمیشہ ہی، کہ خدا تجھے وہ جدت کردار پہ دے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا. کیا کہا اس میں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آج ہمارے پاس جو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ابھی تک ہے امت مسلمہ کے پاس، وہ فیملی سیٹ اپ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو شادی بیاہ اور ان ساری چیزوں کا جو سیٹ اپ بنا دیا، اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے آج بھی ویسٹ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے. ہم سب نے آنکھ کھولی، ماں باپ کو دیکھا کس طریقے سے وہ ہماری اپ برنگنگ کرتے تھے. ایک مرد کماتا ہے اور الحمدللہ 5-6 لوگ کھاتے، ایسے ہی ہے نا؟ آج بھی انڈیا پاکستان میں ایسا ہی ہے اللہ کی توفیق سے. لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ فگرز بدل گئے. آپ کو اس سیکیور ملک میں جہاں آلموسٹ 90% پلس مسلم ہوں گے، شاید اس چیز کا اتنا احساس نہ ہو کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں. یہ مسلم ملک آج بھی دنیا کی جنتیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ قسم کا سیٹ اپ ہے. آپ بہترین طریقے سے سیکیور ماحول میں ایک بیوی ہونے کے ناطے، آپ کے شوہر آپ کے قوام ہیں ماشاء اللہ، آپ کے بچوں کو سمر جابس نہیں کرنی پڑتی، ان کے پاس ابھی باپ کا سایہ سلامت ہے. اللہ نے فطرت کے راستے پہ عورت کو صالحات قانتات میں شامل کیا اور مرد کو الرجال قوامون علی النساء پہ رکھا. اور کئی نسلوں سے ہم سب خوش تھے، آپ کی امی یعنی آپ کے پیرنٹس، फिर उसके बाद आपके दादा दादी, नाना नानी कह लें, उससे भी सब खुश थे। ये जो पिछले कोई 10 यानी ये 2 डेकेड्स हुए, कॉम्प्लेक्स दे दिया। नंबर एक, इक्वलिटी, औरत मर्द बराबर है, तो बराबर हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। चलो औरत को निकालो घर से, मर्द कमाता है, औरत भी कमाए, औरत भी कमाने लगेगी। अब वो औरत जिसको अल्लाह ताला ने इतने, जिसको मैं कह सकती हूँ कि उसके पास सिर्फ 16 GB है, अब सबको ये टेक्निकल लैंग्वेज आती है, मेरे फोन में अगर है ही 16 GB तो मैं 20 GB की को फाइल कैसे डालूंगी। अल्लाह ने मर्द को 1 TB बनाया है, समझने के लिए बता रही हूँ। उसका डाटा बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत बड़ा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, बाहर की जितनी टसल और जो कुछ है और जो दुनिया के चैलेंजेस हैं वो उसको फेस कर लेता। अल्लाह ने इमोशनली मर्द को बहुत स्ट्रांग बनाया है, बात बात पे रोता नहीं है। आप बहुत याद आ रही है अम्मी, वो नहीं रोता, वो स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके अल्हम्दुलिल्लाह आपका और अपने बच्चों का पूरे महीने का बजट बना लेता है, थोड़ी मेहनत कर लेता है, एक्स्ट्रा करता है, शाम में काम कर सकता है कुछ भी। औरत इतना प्रेशर नहीं ले सकती। ये जो लफ्ज है ना खानदान, इसको टूटने में तकरीबन 20 से 30 साल लगे। आज मैं और आप 24 में यहाँ बैठे हैं, आप जरा सा सोचिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी बात सुने, आप भी रिलैक्स मैं भी रिलैक्स। 2000 में जो फैमिली सेटअप था, क्या आज 2024 में वही है? इवन बैक होम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्या हम गैर महसूस तरीके से बदलते नहीं जा रहे? बाप बेटी के रिश्ते का जो एक तकद्दस और एक डिस्टेंस था, आज फर्क पड़ा। बहन और भाई के रिश्ते में जो एक गैरत का उंसर था, दरवाजे पे बहन को देखकर भाई की आंखें लाल हो जाती थी, तुम क्यों उधर खड़ी हो? घर में आने वाले गैर महरम कभी बेटियों और बहनों को देख सकते थे? ये मर्दान खाना, ये जनान खाना, और एक बॉन्डिंग का एहसास था। मुझे पिछले 23 साल हो गए, 24 वही कह ले, 2000 से हिसाब रखा बाहर हूँ, और अल्लाह ने मुझे शायद 26 मुल्कों में रहने का और जाने आने का मौका दिया, कभी वहाँ थोड़ा कभी ज्यादा। मैंने एटलीस्ट इन सारी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम फिर कर जो चीज़ देखी वो क्या है, कि जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। कल तक जो हमारी रिवायात थी, दीन की बात नहीं मैं कर रही, दीन नहीं कभी बदलेगा, अल्लाह ने वो बड़ा खूबसूरत सा एक पैकेज दे दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, वो तो नहीं बदलेगा। हम तो कल्चरली भी बदल गए, बड़े गैर महसूस तरीके से हमारे खानदान तोड़े गए। और इस वक्त आज सिर्फ पहले लफ्ज पे भी बात करी, 4 लफ्ज आपको बता के जाने हैं, खानदान की मुस्बत किरदार साजी। फिर एंड पे कुछ टिप्स दूंगी कि अल्लाह ताला ने खानदान का कितना मजबूत बॉन्ड बनाया है। एक कहावत है कि जब तक पानदान थे खानदान थे। किस किस को लफ्ज पानदान के साथ नानी याद आ गई? दादी, वो अम्मा का और नानी का और दादी का जो पानदान था ना, उसमें से आपको सुई धागा भी मिल जाता था, नेल कटर पता नहीं होते थे तब के, नहीं कैंची भी मिल जाती थी। अम्मा की तरफ सब जाते थे, अम्मा ये है, अम्मा अम्मा अम्मा। फिर कहते हैं कि वो पानदान गए तो खानदान भी गए। हर बंदा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है। आज से 20-25 साल पीछे जाइए, घरों में एक टीवी था, सारी फैमिली को मिलकर बैठकर वही टीवी को वॉच करना था, चाहे चलता देखे चाहे बंद देखे, लिमिटेड आवर्स थे। मैं आपको आपकी माजी की यादें दिलवा रही हूँ। जब टीवी का टाइम होता था तो सब बैठ जाओ, और सबको पता है कि शुरू में पाकिस्तान में पीटीवी शायद शाम 4 बजे से लेके 10 बजे तक होता था। शुरू में भी इस्लामी प्रोग्राम, इकरा प्रोग्राम, नाजरा पढ़िए, वो एक डंडी के साथ अलिफ बाता पढ़ाते थे। फिर इसी तरह से बीच में कोई एक आधी चीज़ डॉक्यूमेंट्री, 8 बजे का ड्रामा सबको याद है, नाम भी याद होंगे, 9 बजे की खबरें, 9:30 पे तजारती खबरें, उसके 9:45 पे कुछ खेलों की खबरें, और 10 बजे से वो राग रंग लगाते थे, मजहबी इख्तदाम, वो उसमें कोई म्यूजिकल किस्म की कोई नात, कोई कवाली लगा के 10:30 चलो जी खत्म, शुद खत्म। कल 4 बजे का इंतजार करो, फिर तुम्हें टीवी की शक्ल दिखेगी। था ना एक दौर। और आपको मेरी इन बातों के साथ जरूर याद आएगा कि जब कभी पहला टीवी घरों में आया होगा आपके, तो क्या हाल होगा। मुझे याद है, जिस मोहल्ले में किसी के घर में एक टीवी आता था, सारे मोहल्ले के बच्चे उस घर में जमा हो जाते थे शाम को। मोहब्बत थी, बॉन्ड था, सबको कहीं ना कहीं जुड़ना ही पड़ता था। आज हमारा जो हाल है, मैं आपको डराना नहीं चाहती। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड में हैं, और जब मैं पाकिस्तान यानी ये यूएई, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों में आती हूँ जिनको हम अपने मुल्क कहते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं इनको क्या बताऊं, ये तो इतने अच्छे लोग हैं, मैं इनको ऐसा क्या बात करूं, इनको तो कोई चैलेंज नहीं। चैलेंज देखना है तो बाहर की दुनिया में आइए। आज हमारे बच्चे अपने घरों में अकेले हैं, लोनली चाइल्ड है, टेंगल कॉर्ड्स हैं, उलझी हुई रस्सियां हैं। एक ही घर में हफ्ता भर मुलाकात नहीं होती शोहर की बच्चों से, या फिर कह लीजिए कि वो जो फैमिली बॉन्ड था, जो आपका मेरा बचपन से है, जुम्मे का दिन पुलाव पकेगा, आलू गोश्त, मुर्गी कब पकती थी, जब कोई मेहमान आता था, याद करे ना। हम भी खुश होते थे मेहमान के आने पे कि मीठा बनेगा। आज आप जाकर मेरी कहने पे फ्रिज देखिएगा अपना, चिकन की कितनी आइटम्स है आपके घर में, फ्रिज बंद नहीं होते, फ्रीजर ओवरलोडेड है, पेंट्रीज में अगले 6 महीने का सामान है। इसके बावजूद हमारे बच्चे कहते हैं नथिंग टू ईट, मामा आप रोज एक ही चीज बनाती हैं, आप मेरी पसंद की तो चीज बनाती नहीं है। आप फील कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता हम कितना बदल गए। एक छोटी सी हंडिया में, ये हमारे वालिद बताते थे कि एक मिट्टी की हांडी में सब्जी, जो भी मौसम की सब्जी मिलनी वो अब्बा ने ला देनी, और अम्मा ने थोड़ा सा नमक मर्च और लहसुन अदरक डाल डूल के तो सब्जी बना देनी, और वो इतना कुछ आलन होता था। तो 5 6 और बच्चे भी माशाल्लाह उस वक्त 6 तो कम अज कम होते ही थे। तो हांडी में से ना एक चमचा, एक डोई पर हेड, उससे ज्यादा सालन ही नहीं। कौलियां होती थी, स्टील की कौलियां, मिट्टी की भी होंगी। तो कहते हैं कि माँ ने जब सालन बनाना तो बस इतना इतना सालन हमारे सबके बोल में डाल देना, और रोटियां तो आटे की एक एक रोटी पकड़ा देनी। एक बच्चा बोलता है ये क्या पकाया, कद्दू, मैंने नहीं खाना। तो माँ क्या कहती थी, बाकियों को कहती थी ये भी तुम खा जाओ, वो भी खा लिया। अब आपको गुस्सा आया, मैं नहीं खाता कद्दू, उठ के चले गए, नाराज हो गए। माँ ने नहीं जाना पीछे। उस दौर की माँ का असूल पता क्या था, खाना है तो यही खाना है, और नहीं खाना तो यही खाना है। आज की माँ कहती है क्या, अच्छा फिर मैं तुम्हें कबाब बना दूँ, बर्गर, पिज्जा, लजानिया, पास्ता, अच्छा नहीं जाओ फिर वो फूड पांडा से ऑर्डर कर दो। आज तो बाहर भी बड़ी माएँ बैठी हैं ना हमारी, बच्चे को भी पता है। आप कभी अपने मुल्कों में जाएं, जब आप सुबह उठते हैं ना तो देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पैकेज पड़े हैं बचे हुए खानों के। क्या ये मिड नाइट डील्स आई थी, किसी ने बर्गर मंगा लिया, किसी ने पिज्जा, और 2000 से कम का कोई शायद एक मील आता हो। हुआ क्या, हमारे बच्चों की चॉइसेस बदल गई। आज भी बच्चे वही हैं, लेकिन आज मैं आपको फिगर्स नहीं दे रही, रफली स्पीकिंग बता रही हूँ। आज से तकरीबन 4 5 माह पहले मैं अमेरिका में थी, 5 मंथ्स रहे। इस वक्त वेस्ट का बड़ा मसला पता क्या आपको, सुसाइड, डिप्रेशन, स्ट्रेस और तन्हाई। जो माँ आती है मेरे कान में कहती है, मैं जब नहीं गई ना अभी, जब लास्ट नवंबर में हम लोग गए थे, तो कान आप जरा थोड़ा सुसाइड पे बात करिएगा। मैंने कहा अल्लाह रहम करे खैरियत, नहीं आजकल बच्चे बहुत कर रहे हैं सुसाइड। फिर थोड़ा वक्त गुजरा तो दूसरे ने, मैंने बाद में पूछा, उन्होंने कहा कि इस लास्ट 2 वीक्स में हमारी कम्युनिटी यानी एक मोहल्ले में 3 बच्चों ने सुसाइड की कोशिश की है। डिप्रेशन पे बात करें, बच्चों को माँ बाप के साथ कहीं नहीं जाना, सॉरी अपना वक्त याद करें, बाहर जाने के शौक में नींद नहीं आती थी, आम सी गाड़ी होती थी, सुजुकी कह ले आज की, कोई उसमें नहीं, और इधर से डालते ही जाते थे अंदर। वो मेहमान को आज कहते ना कितने, आप कहते एक गाड़ी की सवारियां, अब आप वेस्ट में है ना तो एक गाड़ी 5 ही सीटों की है। इवन जब बच्चे की डिलीवरी के लिए जाते हैं ना पेरेंट्स, तो एक सीट खाली छोड़ के लेके जाते हैं,
क्योंकि वापसी पे बेबी होगा, वहां आप 5 वाली गाड़ी में 6 नहीं बिठा सकते। आप वहां आपको कोई कहता है एक गाड़ी की सवारी है तो घर वाला समझ जाता है 5 लोग आ रहे हैं, तो माशाल्लाह देसी लोग कहते हैं बस हमें एक ही गाड़ी की सवारी है, तो वो जब जाते हैं और वहां निकलते हैं तो वो कहते हैं ये एक गाड़ी की सवारी है, एक गाड़ी से 13 बंदे तो हमने भी बचपन में निकलते देखे थे। कोई कहता है मैं पाऊं में बैठ जाऊंगा, याद करें ना अपना बचपन, मैं पाऊं में बैठ जाऊं, कोई कहता है मेरी गोदी में बिठा दे। हमारी एक मोमानी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, उनको कराची आना था लाह पंजाब से, तो उनके साथ बेटी भी थी। अब जहाज का सफर बड़ा महंगा लगता था एक वक्त था, लोग ट्रेनों वगैरह पे जाते थे तो उनको पता लग रहा था कि मेरी जहाज की सीट है, तो उनको गम था कि अब मेरी तो सीट होनी है तो बच्ची की भी होनी है, तो वो जो सीट करा रहे कहती है ये जुनैरा की सीट ना लेना, इसको मैं चोली में बिठा लूंगी, इसको मैं गोदी में बिठा लूंगी। कितना सादा दौर था, कितनी खुशियां थी, छोटी सी हमारी खुशियां बड़ी छोटी छोटी थी, हम छोटी सी छोटी बात पे खुश होते थे। कोई मेहमान आता है जैसे घर में नाना आ गए मामू आ गए, जाते हुए 1 रुपया दे के जाना चीज खा लेना, उस 1 रुपए की जो खुशी थी, आज मेरा ख्याल है जो मैं देख रही हूँ महंगाई, शायद आपके बच्चे को 50 दिरहम भी आप दे देना तो उसको खुशी ना हो, जो ना खूब था वही खूब हुआ। और एक तरफ तो हमारे बच्चे तन्हाई का शिकार है, खानदान हमारा टूटा हुआ है, दूसरी तरफ हम पहले बच्चे अगवा होते थे बाहर, बाहर बच्चे को ना भेजो कोई ले जाएगा, किडनैप्ड। आज हमारे बच्चे अपने ड्राइंग रूम, अपने किचन और अपने बेडरूम में अगवा हो चुके हैं। आज दुनिया ने एक और रंग देख लिया, आप तक भी पहुंच जाएंगी ये बातें, पहुंची भी होंगी, कोई आज कोई चीज फर्क नहीं रहेगी दुनिया में से। आप कहते हैं कि हम अपने बच्चे को लग्जरियस लाइफ दें, हमारे बच्चों को लग्जरी चाहिए, कंफर्ट देना है, बाप कमाते क्यों हैं, आखिर हम इन्हीं के लिए तो करते हैं। एक बेटी माँ को कहती है कि मैंने ये जैकेट लेनी है, और वो जैकेट 10,000 क्रोन की है, क्यों भाई इस पे सोने का रंग कोई पानी चढ़ा हुआ है, कहती नहीं ये मार्का, आप क्या कहते हैं उसको ब्रांड। माँ ने बेटी को समझाया कि इतनी महंगी जैकेट का क्या फायदा, कहती नहीं मेरी सारी दोस्तें इसी ब्रांड की जैकेट पहनती हैं, मैं नहीं पहनूंगी या मैं कोई दूसरी पहनूंगी तो मुझे शर्म आएगी। माँ कहती कि मुझे महंगी लग रही थी कि जब 2,000 की मिल सकती है तो 10 की क्यों लेके दूँ। तो फिर बेटी ने क्या कहा अब सुनिए, जहां से हम फिसलते हैं, अच्छा मामा मुझे यूज्ड लेते हैं, नॉर्वेजियन में उसको कहते हैं ब्रुक्त, मुझे यूज्ड ले दें, लेकिन लेनी मैंने इसी ब्रांड की है, क्योंकि जब मैंने वो पहनी होगी तो किसी को ये तो नहीं पता चलेगा ना कि यूज्ड है, लेकिन ये पता चलेगा यही ब्रांड है। माँ कहती है मेरा तो दिल पिघल गया, हाय मेरी बच्ची, मैंने 10,000 क्रोन जेब में डाले, जाके उसको कहा बेटा तू नहीं ले, ये हाल है आज। पहले दौर में आपको सूट मिलता था, आप कहते थे फुफ्फो ने सूट दिया है, नानी ने जोड़ा दिया है, किसी के घर रह कर आते थे ना तो वापसी पे वो जोड़े देते थे, आम सा सूट, कितनी खुशी। आज पहले आप ब्रांड देखते हैं, मार्का कपड़ा कोई सादा दे दे, आप पाकिस्तान जाते हैं ना, इंडिया जाते होंगे, बांग्लादेश, क्या आपके सारे रिश्तेदार जो है वो करोड़पति हैं, हमारे तो नहीं है, लाखपति भी हो जाए तो बड़ी बात है। अब अगला बंदा अपने शौक से मोहब्बत से, ये भांजी आई है, ये भतीजी है, ये मुझे इससे प्यार बड़ा है, ये मेरी दोस्त की बेटी है, कोई अपनी पसंद से कोई गिफ्ट आपको देता है, किसी के दिल में नहीं आता, ऐसे लड़कियां उठा उठा के फेंकती हैं। मुझे एक माँ ने बुलाया, कहने लगी इसको कुछ समझाइए, मैंने कहा खैरियत, नई नई शादी हुई थी उस बच्ची की तो मैं खे आई ना, कहती कि इसकी सास ने इसके जितने जोड़े बनाए ना ये उसमें से कोई नहीं पहनती, कहती मुझे पसंद नहीं है तो आप इसको समझाएं, तो ऐसी बेतकल्लुफी थी। मैंने कहा कि कौन से जोड़े हैं मैं भी तो देखूं, बिलीव मी उसमें, ये आज से कुछ 5 साल 7 साल पहले की बात है, 1-1 लाख से 1.5 लाख का भी जोड़ा था, बुटीक्स के भी थे। मैंने कहा इसको ये सूट नहीं पसंद बेटा, क्या है आई डोंट लाइक इट, इट्स नॉट माई स्टाइल, इसको क्या ये कलर मुझे नहीं पसंद, ये नहीं वो नहीं, यानी डिसेंट महंगे बुटीक के जोड़े थे, लेकिन लड़की कहती है कि मैं अपनी चॉइस के अलावा नहीं पहनूंगी। आप बताइए उस सास जिसने इतने अरमानों से ये जोड़े बनाए, उसके और उस बहू के दिल में क्लैश तो आना है ना। अब मेरी इन सारी मिसालों से आप समझे, मादियत मटीरियलिज्म इतना आ गया, हमने अपने बच्चों को इतनी दुनिया दी कि वो आखिरत पीछे पड़ गई। पौधे को पानी ज्यादा देना तो गल जाता है, जहाँ खुश्की से पौधे गलते हैं ना, वहां ज्यादा पानी से भी गलते हैं। माँ बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया आज अपने बच्चों को खुश रखने को, और बच्चे खुश नहीं। कैसे? दलील दो, शायद आपको यकीन नहीं आएगा। वेस्ट में एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स पे मुकदमा किया, केस किया, क्यों? तुमने मुझे क्यों पैदा किया विदाउट माई परमिशन? जी, मेरी इजाजत नहीं थी तो आपने मुझे क्यों पैदा किया? आई डोंट वॉन्ट टू लिव। चेहरों पे खुशी नहीं है। जिस घर में चार छह यंग बच्चियां होती थी, कहते थे दूर से आवाजें आती थी उनकी, चिड़िया दा चंबा। आज की बच्चियां खामोश, आपस में बात नहीं करते। मेरा तो चूंकि काम ही हर वक्त का शायद ट्रैवलिंग ही है, आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रही है ना। आप एयरपोर्ट पे देख लीजिए, हर बंदा अपने फोन से खेल रहा है, कुछ नहीं पता इधर कौन है इधर कौन है। आप अल्लाह ना करे हॉस्पिटल जाए किसी को देखने, हर बंदा बैठा है। वल्ला ही मैंने तो हरम के चौकीदारों को भी ताश खेलते देखा है फोन के ऊपर। सोशल मीडिया ने हमें इतना गुम कर दिया, तन्हाई है। हम अपने ही घर वालों से दूर और दूर वालों से करीब हैं। मेरा आज का जो मौजू है ना, वो जवान बच्चे, जब छुट्टियां आती हैं, जब वो दुनिया के कह लीजिए मामला से जरा सा कटते हैं, हम उनके साथ कैसा मामला करें? जो चीज मैं एक जुमला बोल के उठ के चली जाऊं ना, तो मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह आप समझ जाएंगे और आपको फायदा होगा। क्या करें, समझ जाते। आज पेरेंटिंग इतनी मुश्किल क्यों हो गई है, कभी आपने सोचा? वजह बहुत साफ है, बच्चे तो वही हैं, तरीका भी वही है। पहले जिस तरह पैदा होते थे, आज वैसे ही पैदा हो रहे हैं। 9 माह पहले थे, अब भी 9 ही माह हैं। डिलीवरी पेन पहले भी माँ को लगती थी, अब भी लगती है। ये तो नहीं कि दरख्तों से बच्चे उगने शुरू हो गए, बच्चे वही हैं। पेरेंट्स बदल गए, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला था, अब हम वैसे नहीं पालते। और आपको अगर मैं एक अगला जुमला भी दे दूँ ना, आप कहेंगे हमारे बच्चे अपने बच्चों को वैसे नहीं पाल रहे। आप में से अक्सर जिस एज में, मेरा ख्याल है आप कोई ना कोई पोता नवासा तो होगा ना, अक्सर खवातीन शिकवा करती हैं मेरी बहू मेरे पोते पोतियों की अच्छी तरबियत नहीं कर रही। सेम थिंग बेटियों के दामादों से भी है। क्यों? वो कहते हैं इनको सुनो, बच्चा ठीक है। अब मैं लफ्ज खानदान को जरा पूरा कर लूँ तो फिर आगे चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक अम्मी है और हमारे एक अब्बू है। वेस्ट में अब किसी के फॉर्म के फिलिंग में, बच्चे का स्कूल का फॉर्म, स्विमिंग का फॉर्म, कोई आईडी कार्ड बन रहा है ना, पहले 3 खाने होते थे आमतौर पे अमेरिका में, पेरेंट्स, मैरिड पेरेंट्स और अनमैरिड, यानी लिविंग टुगेदर आम है, जिसको लव बर्ड्स कहते हैं, लव चाइल्ड कहते हैं, यानी तुम्हारे माँ बाप की शादी हुई है, मैरिड पेरेंट है तुम्हारे कि नहीं, डिवोर्स पेरेंट है या फिर शादी के बगैर जस्ट लिविंग टुगेदर। ये 3 खाने होते थे, आज 10 खाने हैं। आप जिस आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं कर सकते, वो क्या है, जिसको समझ आता है वो समझ है। दो औरतों की शादी, पहला खानदान वहां क्या है, अब ये खानदान का बड़ा डरावना मंजर देने लगी हूँ। आज वेस्ट में 2 माएं, 2 औरतें मिलके खानदान बनाने की कोशिश में, जी 2 मर्द कैसे? मैं आपको एक वाक्य सुना देती हूँ, रियल स्टोरी है। और हमारी अपनी एक एडमिन है, वो टीचर है एक स्कूल में, जिस भी मुल्क में वह है तो वहां का ये वाक्य है। वो कह रही है कि जैसे स्टाफ होता है वैसे स्टाफ है। स्टाफ ही की 2 मेंबर्स, दोनों सिस्टर्स हैं, उन्होंने शादी के कार्ड दिए सारों को, स्टाफ को, कि फलां दिन हमारी शादी आप आए। यानी वैस ने एक्सेप्ट कर लिया कि 2 औरतें शादी कर सकती हैं। खैर, अचंबा लगा जो भी था, उनकी शादी हुई। वो फिर अगले दिन आई, कह रही सब ने उनको वेलकम दिया जैसे शादियों पे देते हैं, जी ये मैरिड हैं अब दोनों। अब देखिए जरा कैसे गैर फितरत को फितरी बनाया जा रहा है। अब वो दोनों की पार्टी हुई, गिफ्ट दिए गए, कुछ अरसा गुजरा तो अब क्या है जी, बेबी चाहिए। खानदान तो बनता ही मर्द और औरत से था, बच्चा चाहिए, बच्चा कैसे होगा? यानी यहाँ बैठकर मैं आपको बारीकियां नहीं बता सकती। उन दो औरतों ने एक बच्चा कैसे हासिल किया। सर शर्म से झुक जाता है, अल्लाह से मुकाबला करता है ना इंसान। और याद रखिए, ये आपके लिए नई बातें, आपके बच्चों के लिए नहीं है जो दिन रात स्कूलों में ये कुछ देख रहे हैं। एक औरत ने किसी मर्द के साथ ताल्लुक किया और वो जाइगोट दूसरी औरत के यूट्रस में रखवाया, तो दोनों का बच्चा हो गया। समझ आया? नुतफा किसी का, रहम किसी का, बच्चा ले लिया। अब क्या है, फैमिली बुरी हो गई, फैमिली बुरी नहीं हुई, ये बात आज आम है। आज आप किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुम बॉय हो या गर्ल हो। शुरू से माए नानियां दादियां झबले सीती थी, सबको पता, प्रिंटेड कपड़ों के बचे हुए कतरने। और वो कैसा सीती थी, लड़का हो गया तो भी, लड़की हो गई तो भी झबले ही पहन, लंगोट और झबले, याद होंगे आपको भी अपने बच्चों के ये। फिर उसके बाद ब्लू और पिंक का कॉन्सेप्ट दिया गया, बेलून्स। अब अल्ट्रासाउंड ने बता दिया बेटा के बेटी, पूरी मदर केयर और पूरी चेन भरी पड़ी है जो बच्चों की तैयारियां करती हैं। आज क्या हो रहा है, आपके घर क्या पैदा हुआ है, आप नहीं बता सकते। 7 साल का होकर बच्चा खुद डिसाइड करेगा, एम अ बॉय और एम अ गर्ल, मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ। जेंडर के नाम पे जो खानदान टूट रहा है इस वक्त, ये सिर्फ अगले कोई 10-20 सालों की कहानी रह गई है। नस्लें खत्म हो रही हैं, लिविंग टुगेदर में चले साथ रहते थे, होता तो औरत और मर्द था ना, अब दो औरतें रहती हैं। टू मॉम्स फैमिली, फोर पीपल की फैमिली, बाई यानी क्या गंद है, और क्या मैं कहूँ आपको, गंदगी है, बेहूदगी है। ये बाइसेक्सुअल है, आई एम गे, शी इज लेस्बियन, आई एम बाय। बाय क्या, मैं औरत से भी ताल्लुक कर लेता हूँ, मैं मर्द से भी कर लेता हूँ। लोग अपना नाम नहीं बताते, आई एम गे, भाई तुम्हें क्या गे। यानी आज की प्रमोशन देखिए, और हमारी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खैर है, लेकिन जिस तेजी से हमारे मुस्लिम यूथ को स्पॉइल किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। एक बच्ची उन्होंने हासिल कर ली जिसने कहा कि आई एम लेस्बियन, लड़की थी। सोशल मीडिया और उस मुल्क ने उस बच्ची को ऐसे प्रमोट किया कि क्या कोई किसी को कर सकता है। और वो बच्ची एक खौफ कर रही है कि मेरी बातें बाहर होंगी तो मेरी फैमिली मुझे कत्ल कर देगी। उसको वो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया गया जो किसी शाही खानदान को दिया जाता है, लेकिन तुम बोलो, इस्लाम के खिलाफ बोलो। तो ये सब चीजें जो थोड़ी बहुत मैंने बहुत आटे में नमक आपको बताया है, इन सब को सुनते हुए आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। हमारे पास एक पूरी लाइन ऑफ एक्शन है, दुनिया तो आज इतनी परेशान है। वी आर ह्यूमन डॉग्स, ह्यूमन डॉग के नाम से ही समझ आ गया आपको, इंसानी कुत्ते। जाइए कैलिफोर्निया की सड़कों पे, देखिए कुत्ते दिख रहे हैं असल में इंसान। कॉस्ट्यूम कुत्ते का पहनते हैं, 4 टांगों पे चलते हैं, जैसे कुत्ता टांग उठाकर यूरिनेट करता है वो वहां करते हैं। कोई अगर उनको अब मजाक कर दे, उसको जेल में, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है और एक स्टूडेंट बच्ची कहती है आई एम ह्यूमन कैट, और वो म्याऊ म्याऊ करती है, कोई एक बंदा भी उसकी इस बात पे हंस पड़ता है, उसको उठाकर जेल में डाल देंगे। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, आजादी है राय। आप नहीं कह सकते, आप लड़की बनना चाहते हैं कि लड़का, आप डिसाइड कीजिए। आपको इंसान बनना है कि जानवर बनना है, आप डिसाइड कीजिए। अब ये सारी बातें थोड़ी सी सुन के आप भी उलझ गए होंगे, मेरा गुमान है। तो आपकी यूथ, आपके प्यारे बच्चे, बेटियां और बेटे, इस गंदगी को दिन रात सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों के साथ मिलके देख रहे हैं, तो खुदा के लिए अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आपके बच्चों को आपके वक्त की जरूरत है, आपके बच्चों को आपके लम्स की जरूरत है, आपकी गोद में सर रख कर बालों में उंगलियां फिरवानी है। हम इतने बिजी हो गए, हमने अपनी जगह मशीनें दे दी बच्चों को, बाप तो वैसे ही एटीएम मशीन बन गया, अम्मा खाने पकाती रहती हैं, दुनिया उनकी संवारती है, आज हमारे बच्चे अकेले। हमारी सबसे कीमती दौलत बच्चे हैं। कल अल्लाह ना करे जन्नत में एक बच्चा ना पहुंचा, बाकी सारी फैमिली पहुंच गई है। मजाक इमेजिन कीजिए कि जन्नत में जाकर अंदाजा हुआ कि एक बच्चा तो आया ही नहीं, तो क्या हुआ? ओहो नहीं। तो अब जो बात मैं आपसे करूंगी वो क्या है, बीइंग अ मदर। अब आप में से कुछ माएं, कुछ माएं नहीं भी होंगी, कुछ फूफो होंगी, खालाएं होंगी, आपके अपने बच्चे नहीं है तो आपकी दोस्तों के बच्चे। आज की यूथ को हमारे वक्त की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। इसके लिए हम चंद चीजें देखेंगे, ऐसी गो थ्रू करेंगे। कुरान क्या कहता है हमें, फ़ाइज़ा फ़रख्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। सूरत अलम अशरफ सभी पढ़ते हैं, आती भी है सबको, कि बस जब तुम फारिग हो जाओ तो फिर मेहनत कीजिए और अपने परवरदिगार की तरफ रागिब हो जाए। जब हम दुनिया में अपने आप को बहुत मसरूफ देखें, ये जो फैमिली 360 का कॉन्सेप्ट है, जरा से इसको समझिए। अल्लाह सुबहान तआला ने हमें एक असूल दिखाया इस आयत में, बस जब आप फारिग हो, यानी आपका कोई काम हो जाए, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो गया, कोई काम होना था, कोई इवेंट था, वो हो गया, तो आप क्या करें, फन सब दोबारा मेहनत में लग जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक गोल दिया गया था कि मोमिन पूरी जिंदगी ऑन जॉब होता है, जो वक्त फारिग हो जाए तो इबादत की मशक्कत में लग जाए और अपने रब की तरफ फरगब फारिग हो जाए। एक रूटीन लाइफ होती है हमारी सबकी, एक पहिया घूम रहा है, सबको होता है वीकडेज और वीकेंड का फर्क। सुबह 7 से 9 तक ट्रैफिक आवर्स, 5 बजे फिर रश टाइम। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूलों में जाते हैं, शौहर कामों पे जाते हैं। क्या 5 वक्त नमाजों में भी रश टाइम होता है? हमारी रूटीन में हम मुसलमान मुल्कों में रहते हैं, हमारे बच्चे भी मुसलमान माशाल्लाह। मेरा एक सवाल है आपसे कि 7 बजे एक बच्चा स्कूल जाने के लिए उठता है और उठाया भी जाता है और वो 10 साल से बड़ा है, तो क्या सुबह 5 बजे भी घर का वही माहौल होता है जो 7 बजे होता है? क्या आप बच्चे को फजर के लिए उठाती हैं? क्या फजर के वक्त हमारे घर वाकई ऐसे घर दिख रहे होते हैं कि जिधर रहमत के फरिश्ते आ रहे हो? कम अगर आप चाहती हैं अपने बच्चों को सही तरीके से रेस करना, तो आपको सबसे पहले उनको सुन्नतों पे लेके आना पड़ेगा, फराइज पे आना पड़ेगा। जिस घर में फजर के वक्त लोग सोए हों वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान है। छुट्टियों में एक बहुत बड़ा मसला क्या होता है कि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल नहीं जाना तो रात देर तक जागते हैं, और जब देर तक जागते हैं तो सुबह देर तक सोते हैं, कितनी फजर जाती है। तो हमारे लिए एक असूल बनना चाहिए, और वो क्या कि जब आप मुलाजमत, घरेलू मशागिल और बच्चों की तालीम व तरबियत से थोड़ी सी फरागत पाएं, तो अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करें। छुट्टियों के जो दिन हैं ये हैबिट्स को डेवलप करने के दिन है। कैसे? ठीक है, 7 बजे बच्चे ने स्कूल जाना है और आपको लगता है अगर वो 5 बजे उठ गया तो फिर 7 बजे तक क्या करेगा, एक साइड पे रखिए इसको। आज से बाद जब भी कभी आपके बच्चों की छुट्टियां हुई, तो आप पहले से बच्चों के साथ प्लान करें कि बेटा हम छुट्टियों में फजर की नमाज फलां मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे। आप बच्चों को एक्टिविटीज दीजिए। हम असल में उनको हुक्म देते हैं, नमाज पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अच्छा, अब्बू नहीं मस्जिद जाते तो बच्चा वो कैसे चला जाएगा? तो पहली चीज जिस पे आप और मैं अपने बच्चों के काम करेंगे वो यह है कि उनको इबादत और जिक्रे इलाही की आदत डालें। क्या फन हमेशा गुना में ही है? आप लोग यहाँ से उम्रा करने जाते हैं, तवाफ कराते हैं बच्चों को, इबादत करते हैं, क्या मज़ा नहीं आता? बहुत मज़ा आता है। देखिए, टेस्ट चेंज कीजिए। आप और मैं कोशिश करें कि हमारे बच्चों का दिल इबादत में लगे, क्योंकि कुरान क्या कहता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहू काना तव्वाबा, सूरत नसर की आयत 3 है। तो अपने रब की तस्बीह कीजिए उसकी हम्द के साथ और उससे मगफरत मांगिए, बेशक वो बड़ा ही माफ करने वाला है। आप बच्चों के साथ मिलकर तस्बीह की गेम खेलें। चलें, आज का गोल ये है कि हम 100 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे। पढ़िए, अब वो तस्बीहों पे पढ़े, उंगलियों पे पढ़े, ये एक अलग इशू है। एक्टिविटी बनाइए। और ये जो बच्चे होते हैं ना, 7, 8, 9, 10 साल के, बड़े प्यारे होते हैं, वो आपके पीछे बकरी के बच्चे की तरह फिर रहे होते हैं, उनको आपकी तवज्जो चाहिए। और यहाँ मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा, छोटा बच्चा माँ के पीछे फिरता है और माँ टाइम नहीं देती, क्योंकि उसको काम पड़े हैं, उसे शॉपिंग करनी, पार्लर जाना, ये करना, वो करना। और जो ही बच्चा बड़ा होता है 12 से ऊपर, तो माँ से बच्चा दूर और माँ उसके पीछे पीछे। छोटे बच्चों को टाइम दीजिए। ये 8, 9, 10 साल के बच्चे दी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे कि जो कहें वो करते हैं। आपके घर में कोई प्रोग्राम होने वाला हो ना, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड आपके बच्चे होते हैं। तो किसी दिन उनके साथ तस्बीह करें। चलिए, एक दिन का गेम, 10 छुट्टियां है ना, एक दिन उनको शुक्र की तस्बीह दें। बेटा, आज हम में से कौन सबसे ज्यादा शुक्र करेगा? किस बात का शुक्र? नेमतों का। चलो नेमते गिनते। मैंने एक मौके पे एक बच्चे से पूछा कि बेटा आपको अल्लाह ने क्या कुछ दिया है, तो 2-4 चीजें गिन के कहता बस, उसको जो याद आई। तो मैंने कहा, और कहता आई थिंक सो आई हैव दीज थिंग्स। फिर मैंने उसे कहा, चलो जिस्म से शुरू करो, हमारी बॉडी में कितने हजारों ऑर्गन्स हैं। और अल्लाह के नबी कहा करते थे, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या पता चला, बच्चों को याद कराएं, चलो अपनी नेमतों को लिखो और खुद भी लिखें। और आप सबको मैं सच बताऊं, आप ऊंची आवाज से बोलें, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। अपने बच्चों के नाम लें। आप अल्लाह से दुआ करें ना, बातें करें, तो अपने बच्चों के नाम लिया करें, अल्लाह तूने मुझे ऐसे दिया। जैसे एक मौके पे भतीजे होते हैं ना, भाई के बेटे भतीजे ही होते हैं, तो मेरे भाई का बेटा छोटा था, अभी बड़ा ना, पहला ही था, तो लाड भी बड़े थे उसके। तो मैंने एक दिन कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना प्यारा भतीजा दिया। आपको तो मैंने नहीं उसको सिखाया, लेकिन उस बच्चे ने जवाब में क्या कहा, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे इतनी अच्छी फुफो दी। टिट फॉर टैट। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह तो मेरा मोहसिन कितना प्यारा है, अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मुझे अब्दुल्ला दिया है, अल्लाह तूने मुझे आयशा दी है, तूने मुझे फातिमा दी है। शुक्र बन के, शुक्र करके सिखाइए। मियाँ के साथ मैं बैठे हैं तो करें दुआ। आपको दो एक मुश्किल काम, परसों दिया उधर दमाम वालों का, चीखें निकल गई औरतों की, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। और वो उनको क्या काम दिया, बस में थे हम लोग और वो कहीं जा रहे थे, मैंने कहा आपने अपने शोहर को जाके कहना है थैंक यू फॉर मैरिंग मी, इतना मुश्किल काम है। फिर मैंने उन्हें कहा सब बच्चों की तरह पढ़े, नहीं, हमसे कुछ और करा ले, हमसे नहीं ये बोला जाता। चले अब एक छोटा सा होमवर्क दे दूं आज के इस लेक्चर का, घर जाकर अपने मियाँ के सामने जाकर यही जुमला बोलना है, और आगे ये नहीं कहना कि ये हमें होमवर्क मिला है। तो शुक्रगुजार बनिए। ये बड़े प्यारे होते हैं, ये रिश्ते एनर्जी ड्रिंक होते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और फैमिली एक तरफ। फिर इसी तरह कुछ टिप्स ले लीजिए, छुट्टियों से बेहतरीन फवायद हम कैसे हासिल करें। पहले से प्लान कीजिए, जो मैंने अभी आपको बता दिया, आपकी अगली छुट्टियां जो भी आने वाली हैं उसको पहले से प्लान कीजिए कि हमने क्या करना है। छुट्टियों में जो काम करने हैं ना, उसकी लिस्ट बनाइए। मसलन फलां रिश्तेदारों से मिलना है, उधर जाना है, और बच्चों को इन्वॉल्व करें। बच्चों से कहें बेटा आप 10 दिन का प्लानर बनाएं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुछ काम अधूरे हैं, बच्चों के भी आपके भी। हमारी आदतों में एक आदत होती है, हम काम शुरू तो करते हैं, पूरा नहीं होता हमसे। मैंने एक दफा शौक में, जब नॉर्वे में नई नई गई, तो वहां की गोरियां भी ना स्वेटर बड़े बुनती हैं, तो मैंने कहा मैं भी स्वेटर बुन लूं, शायद मैं गोरी हो जाऊं। ऊन ला दी इन्होंने ना, ऊन और कुरेशिया। मैंने कहा क्या बुनूं, फिर वहां सॉक्स या ग्लव्स बुनते हैं। मैंने आपके सर के लिए सॉक बुननी शुरू की, अल्लाह के बंदो, अल्लाह अल्लाह करके उसका एक पाँव तो पूरा हो गया। अब जब वो दूसरा है तो मेरा शौक पूरा हो गया, वो पूरी नहीं हो रही, वो कभी बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, उसको कई महीने लगे। इन्होंने कहा कि शुक्र है कि मेरा पाँव बड़ा नहीं हो रहा, वरना तुम्हारा पूरा होने तक। फिर मैंने उसको उधेड़ दिया, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं शुरू करूंगी जो एक ही होगी, टोपी। आगे पूरी हो तो पूरी कर ले। तो अधूरी चीजें जो होती हैं वो दिल पे बोझ डालती हैं। तो आप छुट्टियों में बच्चों को कह सकते हैं कि अधूरी चीजें हैं, बच्चों से मतलब खुद भी कोई मुलाजमत का काम है, जॉब, स्कूल की कोई चीजें हैं, उसको कंप्लीट कीजिए। बच्चों को इन्वॉल्व करें। द फर्स्ट की पॉइंट इज दिस, खाना पका रहे हैं तो बच्चे साथ, घास काट रहे हैं तो बच्चे साथ। इसी तरह से आप देखिए कि बच्चों को साथ लगाकर घर के काम करें, मसलन बावर्ची खाने में काम और सफाई वगैरह करना, एक अलमारियां ठीक, बेटियों से काम कराएं। माफ कीजिए, आज की माएं बच्चियों से काम नहीं कराती। हमारी माओ ने हमें जितने काम कराए, हमें कितना गुस्सा आता था, कब शादी होगी, जान छुटेगी, वो बाद में पता चला जान और फंस गई। तो बच्चों को साथ लगाइए। फिर इसी तरह से आपकी फहरिस्त के जो काम मुकम्मल होते जाएं, इन पर निशान लगाते जाएं। इस तरह आप अपनी छुट्टियों के औकात को मुनज्जम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक और बहुत प्यारी टिप है छुट्टियों में बच्चों के साथ करने वाली, कि बच्चों के साथ मिलकर बचे हुए खाने से कुछ नया बनाना सीखें। आता है या मैं सिखाऊं? अक्सर मर्द दूसरे वक्त का खाना नहीं खाते, यानी आपके सर है ना, वो जो खा ले खा लिया, दोबारा वो सेम चीज नहीं खाते। तो मैं दिल में कहती हूँ ना सही, खाना तो अपना ही है, बची हुई चीज सैंडविच बना दें, चावल बना दें, शक्ल बदल दें, कुछ सूखी थी तो उसकी ग्रेवी बना दें, ग्रेवी थी तो सुखा दें। तो बच्चों को सिखाइए, देखिए हफ्ते में एक दिन कुछ नहीं पकेगा, पिछले को रिसाइकल करें। हम अपने बच्चों को इतना खिलाते हैं ना, इसीलिए फिर वैल्यू भी नहीं होती। फिर इसी तरह एक काम हम क्या कर सकते हैं कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारेंगे। पूरी फैमिली का हिसाब लगा लीजिए कि इन छुट्टियों में किस किस को मिलना है, किधर जाना है, दोस्तों में मिलके कोई पिकनिक बना लें। हमारे नॉर्वे में इस चीज का बहुत रुझान है ना, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, हर दिन बारबेक्यू, आज उधर आज उधर आज उधर, क्योंकि वही 2 महीने होते हैं जिसमें बाहर जाना होता है। फिर एक और बहुत फायदे की हैबिट है जो आप छुट्टियों के नाते से लें, सब घर वाले मिलकर मुआशरती और फलाही कामों में हिस्सा लें। मुआशरती मीन सोशल और फलाही मीन बेनिफिशियल। मैं आपको बताऊं, 17 मई, 17th मई नॉर्वे का नेशनल डे है, जैसे हमारा 14-15 अगस्त है ना। उससे पहले नई नई बर्फ खत्म हुई होती है, अप्रैल तक बर्फ चलती है मोस्टली, अप्रैल मई में भी ना। हर घर के बाहर लोग अपने घर की सफाई करते हैं, वो पेबल्स होते हैं ना छोटे छोटी जो पत्थर वो डालते हैं, वो इकट्ठे करते हैं। पूरा नॉर्वे अपने मुल्क घर को, गलियों को साफ करता है। हम करते हैं, अपने बच्चों को लेकर स्कूल, घरों को और जगहों को साफ करें। फिर इसी तरह एक टिप यह है कि मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लें और बिलखसूस नए फन और हुनर सीखें। कोई एक चीज सिखा लें बच्चों को। ये जो हमारे कल्चर में ना कि लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकते, इससे भी बचिए। फिर इसी तरह कुछ स्टडी टाइम रखिए, मुतालिया कीजिए, निसाबी और इस्लामी तारीख और दौरे जदीद से कुछ मुतल्लिक किताबों में दिलचस्पी लें। बच्चों को उनकी छुट्टियों के मुताबिक कोई बुक चूज कराएं, 10 सफ़ों की, 8 की है, 100 की है, ज्यादा है, और कोई एक टॉपिक चूज करें, जैसे बच्चों को सीरत के वाकयात सुनाना वगैरह। फिर इसके बाद सैर, फसीरु फिल अर्दी, बाग़ों की सैर करना, अल्लाह की कुदरत देखना। इस पे मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ जो माशाल्लाह हम लोगों ने अभी इसी समर में काफ़ी चीज़ें की, जिसमें आप देखते हैं कि आप इस वक्त जो देख रहे हैं, हम ट्रिप लेकर जाते हैं नॉर्वे में। हर साल हम एटलीस्ट 2 ट्रिप तो लेके जाते हैं, फैमिली ट्रिप्स होते हैं, बस में, ट्रेन में, और उसमें फिर रास्तों में गौर व फिक्र होता है, तदब्बर होता है, और माशाल्लाह इतना पॉजिटिव हमें मज़ा आ रहा होता है कि गौर व फिक्र। अब ये आपको तस्वीर में तो वो चीज़ दिख भी नहीं रही जो रियल में हमारे साथ, पीछे पूरा ग्रुप होता है, फिर उनको दिखाया जाता है कि देखिए ये घास किसने पैदा किया, ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ। फिर इसी तरह से वहाँ रस्तों में दावा होती है, कुरान कहता है वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आगे तक जाके देखे तो वलिल्लाहिल मसीर, तो कायनात पे गौर करें कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुश होने के मौके रखे। ये हमारे एक ट्रिप की पिक्चर्स थोड़ी सी मैंने आपको आइडियाज देने के लिए दिलवाई कि कैसे ये बिल्कुल जहां हम ठहरे थे ना उसके साथ नदी, तो आपके भी इधर बहुत सारी ऐसी जगह होंगी, कहीं ना कहीं बच्चों को जरूर लेकर जाएं। इसी तरह एक जगह हम गए, ओल नाम है उस सिटी का, तो ये वहां की कुछ पिक्चर्स हैं। रास्ते में आप देखिए ये टनल्स गुजरती हैं, और जब आप दुनिया में फिरते हैं तो आपको पता चलता है कि नल कुव्वत लिल्लाह ही जमीया। एक एक्टिविटी जो मैंने खुद पर्सनली अभी चंद दिन पहले आने से की थी वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। हम जंगल की सैर में गए थे। जंगल है ये, देखिए ये वेन्स है, ये जब दरख्तों को नीचे पत्थरों में जाने की जगह नहीं मिलती ना तो ये ऊपर उसकी रूट्स आती है, जैसे बूढ़े लोगों के हाथों की वेन्स होती है ना, ये आपको वो दिख रही है। और फिर इसमें आप घूमते हैं जब इस पे, अभी हम लोग वॉक कर रहे थे उसके ऊपर, इतनी सॉफ्ट जमीन होती है जैसे लकड़ियां छोटी छोटी गिरी हुई। तो ये बच्चे साथ हों, घर वाले हों, तो हम इस पे गौर व फिक्र करते हैं कि देखे कैसे इन पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने इस सब्जे को रखा हुआ है। इस तरह की चीजें जो है ना, आप देखेंगे कि उनको अल्लाह के करीब करेंगी। ये खुदा के लिए गैजेट और ये उनकी गेम्स, इससे जरा सी जान छोड़ा। लिमिटेड टाइम रखें, बच्चों को एक्सपोज करें। आप दुनिया की बनी हुई चीजें देखते हैं तो दुनिया वालों से मुतासर होते हैं, और जब नेचर में लेके जाते हैं तो वहां आप उससे मुतासर होते हैं। फिर इसी में हमने एक जो बहुत ही मजे की चीज हमारे साथ हुई थी वो क्या थी, हमने वहां आग जलाई और नाश्ता बनाया। अभी दिखाती हूँ उसकी कुछ क्लिप्स आपको। ये वाली वीडियो जो है ना, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, अगर बाद में आप कुछ आइडियाज लेना चाहें तो। सैरो सियाहत से मुतल्लिक हमारी कुछ प्लेलिस्टें हैं, उसमें आपको दिखेगा क्या वो एक्सपीरियंस था, कैसे सहाबाए कराम जंगलों में आग जलाकर काम करते थे। ये मैंने फर्स्ट टाइम खुद भी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया। आटा लेकर गए हुए थे, उसकी ब्रेड बनाई, ये आपको अगर दिखे थोड़ा सा तो, ये देखिए चाय बन रही है, पानी साथ छोटा सा फ्लास्क लेकर गए हुए। फिर इसी तरह से वहाँ कुछ और भी चीजें थी। तो यानी कहने का मकसद ये है कि बच्चों को एक्सपोज करें। इसमें एक बहुत प्यारा आइडिया आपको नेक्स्ट छुट्टियों में जरूर कीजिएगा, राइस एंड शाइन पार्टी। फजर के नमाज के वक्त पे पार्टी रखिए, जहां से आपको सनराइज भी दिखे, समंदर पे चले जाएं या किसी के घर में। तो इस तरह की हम लोग अटलांटा में ऐसे प्रोग्राम हमने अटेंड किए, सब अपने अपने नाश्ते का सामान ले आते हैं, किसी एक बड़े घर में मर्द अलग औरतें अलग, तो वहां सारे फजर के बाद जमा होते हैं, पहले सनराइज होता है, फिर छोटा सा लेक्चर होता है, फिर सूरज का निकलना, ये गौर व फिक्र करा के, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको सब मिल के नाश्ता करते हैं, और 9-10 बजे सब फारिग होके घरों में भी चले जाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ आइडियाज हैं आपके लिए। फिर उसके बाद ये है कि कोई इस्लामिक लेक्चर सुन लीजिए डेली, कोई इल्मी या दीनी वर्कशॉप में हिस्सा ले लीजिए, अकायद को पुख्ता करने वाली कोई किताब, उसका मुताला भी फायदा देगा, किसी इस्लामी स्कॉलर के लेक्चर सुन लीजिए, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए, क्या पता आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। जिंदगी एक नेमत है, लाइफ इज टाइम, फारिग वक्त एक नेमत है, इससे फायदा उठाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों उनमें से बहुत सारे लोग दो नेमतों की कदर नहीं करते, एक फरागत और एक सेहत। तो अल्लाह करे कि हम इससे फायदा उठाएं। जजाकल्लाह खैर।